उठाई जीव तलुआ पे मार दे रे। एक बिहारी लाल कवि ने एक लिखी है कविता, उठाई जीव तलुआ पे मार दे रे, मतलब जीव को उठाया और कुछ भी बड़बड़ा दिया आपने। तो सीता ने सबसे पहले क्या विचार किया कि इतना प्रचंड जो संकट आया है मेरे जीवन में उसका कारण क्या होगा, मैंने गुरु की निंदा की होगी, अथवा दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मैंने किसी मिले हुए प्राणी का, किन्हीं मिले हुए दो प्राणियों का विरह कराया होगा। कभी क्या होता है कि पोपट का बच्चा है तोते का, अब आदमी उसको पालना चाहता है तो उसकी मां से छीन करके वो उसको पाल लेता है, और कुत्तों के साथ तो अक्सर होता है, और उसकी वेदना आपको पता नहीं है, या पता भी हो भगवान जाने, हमने अमरावती में देखा, हम जिस स्थान पर ठहरे हुए थे मंदिर जी के बाजू में एक भवन था, उसके बाहर एक कुतिया ने दो तीन बच्चे रखे थे, और क्या हुआ, एक बच्चा उसका कोई ले गया तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। क्या होता है कि पता नहीं उनको गिनती आती है कि नहीं आती है, लेकिन जब सभी बच्चे चले गए तो बाजू में एक श्वेतांबर बहन थी, वो इनको रोटी वगैरह डाल देती थी कभी, तो वो दृश्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा, और फिर उसकी अंतर्वेदना को अगर समझ ले तो फिर एकदम हृदय द्रवित हो जाए, ऐसा दृश्य था। वो उनके घर गई वो कुतिया, जब उसके सभी बच्चे ले गया कोई तो वो उनके घर गई, और घर जाकर साड़ी पकड़कर खींच कर यहां लाई, और यहां लाकर के ऐसे खड़ा किया, और फिर ऐसे वो मुंह से ऐसे इशारा कर रही कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, और फिर ऐसे सिर उठा करके ऐसा रोती थी वो, उस करुण दृश्य को देख करके एकदम हृदय द्रवित हो जाए, इतनी संवेदना। सीता ने मन में विचार किया, मैंने किसी प्राणी का वियोग कराया होगा। पहला विचार क्या कि या तो गुरु की निंदा की होगी, और दूसरा या तो किसी का वियोग कराया होगा, और तीसरा किसी जीव की हत्या की होगी। इसके सिवा इतना प्रचंड कर्म फल मिल नहीं सकता। और फिर उनने सेनापति को जो कुछ बोलना था राम के लिए वो बोल करके भेज दिया, और यहाँ मूर्छित हो गई। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं पद्म पुराण में और फिर अन्य ग्रंथों में भी, उन घटनाओं को पढ़ने से अपने को अंतर्बल मिलता है। अपन तर्क वितर्क में ज़्यादा पड़े रहोगे ना तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कई बार मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय में मनुष्य के पास ही तर्क होता है। अभी वैज्ञानिकों ने शोध किया और पता लगाया कि रीजनिंग पावर सिर्फ ह्यूमन माइंड में है, तार्किक शक्ति, इसीलिए मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति रखने वाले घोड़े, भैंस, हाथी आदि बड़े बड़े जानवरों को मनुष्य जीवन भर हांकता रहता है, और वो जानवर चुपचाप मनुष्य के अत्याचारों को सहन कर लेते हैं। अगर उनकी बुद्धि में तर्क होता तो अभी मनुष्य तो एक दिखता नहीं दुनिया में, सबको ठिकाने लगा देते वो कि ये सबसे खुरापाती प्राणी है मनुष्य, लेकिन वो उन बेचारों के पास तर्क नहीं है, इसलिए वो बेचारे सब जुल्म सहन कर लेते हैं मनुष्य। तो तर्क तो अपन ने अनादि काल से अनंतों बार किए, बस बाकी क्या बचा, भावना। उस भावना के जगत में अपन ने प्रवेश नहीं किया। भावनाओं में अगर इस जीवन में अपन प्रवेश कर जाएं तो फिर अपन श्रद्धा, भक्ति, करुणा, वात्सल्य जैसी भावनाओं में जा करके अपने उन पापों को धो सकते हैं जिन पापों को कभी कभी तपस्या से भी नहीं धोया जा सकता। भावना बहुत ऊंची चीज होती है, तर्कणा और कल्पना बहुत छोटी चीज है। तर्क तो जिसकी भी बुद्धि तेज है वो कर सकता है, कोई भी विज्ञान का विद्यार्थी आपके सामने 50 तर्क रख देगा तीसरा अध्याय सुन करके तत्वार्थ का, 50 तर्क रख देगा, कहाँ है 2 सूर्य, बोले क्या जवाब है आपके पास? तो अपने को अभी इस जीवन में भावनाओं को निर्मल बनाने का प्रयास करना है। ये बात हम आपको आज बतलाए देते हैं। आज चूंकि अपन ये भावना अनुप्रेक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं, वैसे अनुप्रेक्षा को अपन भावना कारण में कार्य का उपचार करके कहते हैं। वास्तव में अनुप्रेक्षा साक्षात भावना रूप नहीं होती, अनुप्रेक्षा चिंतन है। अनुप्रेक्षा इसका अर्थ लगाइए, अनु अनु यानी बारंबार, प्र प्र का अर्थ होता है अच्छी तरह, और ईक्षा ईक्षा का अर्थ होता है चिंतनम, चिंतन चिंतन करना। बारंबार अच्छी तरह भली प्रकार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनित्य अनुप्रेक्षा में क्या होगा? अनित्यता का आपको बारंबार अच्छी तरह चिंतन करना है। और फिर भावना क्या वस्तु है? इसका फल। अनुप्रेक्षा करेंगे आप बार बार तो फिर क्या परिणाम क्या निकलेगा? संवेग और वैराग्य। तो संवेग और वैराग्य जो है वो भावना है, और ये जो 12 है ये अनुप्रेक्षा है। इसलिए इसमें कारण कार्य भाव है, और भावनाओं में संवेग, वैराग्य, भक्ति, वात्सल्य, करुणा आदि कई प्रकार की भावनाएं हैं। इन भावनाओं को अगर अपन निर्मल करते हैं, अपन बोलने में तो बोलते हैं कि चलो भावों को निर्मल करो, अब कौन से भावों को निर्मल करो? तो इन भावों को निर्मल करना है। करुणा निस्वार्थ होनी चाहिए। आप किसी पर उपकार करते हैं तो उसमें अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मौके पर मेरा भी ये साथ देगा, अथवा इस पुण्य से मुझे भी कोई साथ देने वाला मौके पर मिल जाएगा। नहीं, मुझे मिले या ना मिले इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने अगर किसी को तकलीफ होती है तो मेरा कर्तव्य है कि उस तकलीफ को यथासंभव मैं दूर हटाऊं। निस्वार्थ होनी चाहिए करुणा, और निस्वार्थ करुणा का फल बड़ा होता है। और इसमें नीति वाक्यामृत में तो आया है कि प्रत्युपकार की वांछा से किया गया उपकार व्यापार है, उपकार नहीं, क्योंकि एक्सचेंज आ गया ना वहां। क्या अगर बेटे को पिता इस उद्देश्य से पढ़ाता है कि दहेज की मात्रा, समझ रहे बात, तो फिर ये पिता पुत्र के रिश्ते की निर्मलता में बाधक है, क्योंकि आपने फिर बिजनेस बना लिया, उसको कमाई का साधन बना लिया, और कमाई का साधन बना लेने के कारण फिर वो बेटा वृद्धावस्था में आपकी सेवा नहीं कर सकता। वो सोचेगा कि मैं अपनी कमाई करूं, इनके पीछे कहां समय खराब करूं, फिर वो वृद्धाश्रम में दाखिल करा देता है। देखो टिट फॉर टैट है, ऐसा नहीं, अपन अपेक्षा जरूर रखते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसा होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जिसने कभी देखा ही नहीं सेवा, वो क्या सेवा करेगा? आपने अपना पूरा ध्यान बच्चों पर केंद्रित किया, अपने माता पिता पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने यही देखा तो बच्चा क्या सीखेगा? कि अपनी परंपरा ये है कि बच्चों पर ध्यान देना, बाप पर ध्यान नहीं। अब जिसने जैसा देखा वो वैसे ही सीखता है, तो वो अपने बच्चों पर ध्यान देगा, अपने बाप को गौण कर देगा। अगर आप बच्चों के सामने माता पिता की सेवा करते हैं तो उनको सीखने मिलता है। तो ये क्रम चलता है। तो भावना में ये निस्वार्थता होनी चाहिए, भक्ति भी निस्वार्थ होनी चाहिए, निष्काम भक्ति कहा, क्योंकि भक्ति में अगर स्वार्थ होगा तो फिर वहां भी वही हाल है। स्वार्थ पूर्ति न होने पर वो भगवान को भी छोड़ सकता है, क्योंकि भगवान को उसने माना क्यों था कि सुनते हैं कि इनकी शरण में सब कुछ मिल जाता है, भुक्ति मुक्ति दातार पढ़ा भी है मैंने, भुक्ति मुक्ति दातार। तो इससे पहले कि आप जैन धर्म की तरफ समर्पित हो, आप समझ लो कि ये धर्म है थोड़ा अलग है, ये स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, ये परमार्थ प्राप्ति का साधन है। स्वार्थ पूर्ति के लिए आपके लिए दुनिया में बहुत सारे दूसरे रास्ते हो सकते हैं, ये जैन धर्म कभी भी अन्याय नहीं करता। सुधा सागर महाराज ने अभी तलोद में ये बात कही थी कि आप सोचो कि धर्म से मुझे सुख मिल जाएगा, तो बोले पहले से ये बात सुन लो कान खोल करके कि अगर ये सोचकर तुम धर्म स्वीकार कर रहे हो तो बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल देना, धर्म से सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सुख पुण्य से मिलता है, धर्म से नहीं मिलता। जिसने पाप किया आज अगर वो धर्म कर रहा है तो धर्म उसको सुख देगा? जिसके पास पुण्य है ही नहीं बैलेंस में उसको सुख नहीं मिल सकता। बहुत विचित्र बात है ये, एकदम पूरे होश में सुनना इसको, धर्म से सुख नहीं मिलता, कितनी विचित्र बात है। और इसका दृष्टांत ये लगा लो आप कि आप न्यायाधीश को सच्चा कब मानते हो? जब वो निष्पक्ष होता है तब। अगर किसी हत्यारे को न्यायाधीश रिश्वत लेकर छोड़ दे तो आप उसको न्याय कहोगे कि अन्याय? अन्याय कहोगे, दृष्टांत में तो बिल्कुल स्पष्ट है बात। तो इसी प्रकार जिसने पूर्व जन्मों में खूब पाप कमाया है वो अगर आज धर्म अंगीकार करता है और धर्म उसको सुख दे दे सुख देता है तो फिर धर्म न्यायाधीश कहां रहा? पाप करने वाले को धर्म सुख नहीं दे सकता, पुण्य करने वाले को ही सुख की प्राप्ति। धर्म तो एक न्यायाधीश निष्पक्ष है, जिसने पाप किया उसको पाप का फल मिलेगा, जिसने पुण्य किया उसको पुण्य का फल मिलेगा। सुकुमाल स्वामी को भी धर्म ने शालिनी के उपसर्ग से बचाया था क्या? नहीं बचाया। सुकौशल मुनि को शेरनी खा गई, धर्म ने बचाया क्या? नहीं बचाया। सीता को राम ने वनवास दे दिया, धर्म ने बचाया क्या? नहीं बचाया। इतने सारे दृष्टांत, सैकड़ों दृष्टांत मिलेंगे आपको शास्त्रों में कि संकट के समय धर्म नहीं बचाता। ये तो अपन क्या है कि आश्वासन सुन सुन करके लुभा गए हैं कि नहीं धर्म से बहुत सुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता है। पर सुख की परिभाषा क्या है इसको न जानने के कारण अपन जिसको सुख मिलता समझते हैं वो सुख मिलता होगा ऐसा समझ लेते हैं, है ना? अपन जिसको सुख मानते हैं वो सुख धर्म से मिलता होगा ऐसा अपन मान लेते हैं। धर्म से जो सुख मिलता है उस सुख का नाम है मोक्ष। अब अगर चाहिए हो सुख तो तैयार हो जाओ, कौन रोकता है? लेकिन धर्म संकट से नहीं बचाता, ये बात याद रखना। फिर आप कहोगे कि फिर क्या करें, फिर तो धर्म की शरण लेने से क्या मिला, मतलब हमें क्या लाभ हुआ? तो अपने लाभ की अगर आप बात करते हो तो फिर ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि धर्म से जो लाभ होता है वो भी अनूठा लाभ होता है। वो लाभ ये होता है कि बड़े से बड़े संकट को झेलने की ताकत सिर्फ धर्मात्मा के पास ही होती है। शालिनी वाले संकट को क्या आप झेल सकते थे? क्या कोई साधारण मनुष्य झेल सकता था? सीता के ऊपर आए हुए कष्ट को सीता के सिवाय क्या कोई दूसरा सहन कर सकता था? कैसे सहन किया उसने? तो वो शक्ति कहां से आई? वो शक्ति देने वाला था धर्म। अब बोलो, धर्म पसंद है कि ना पसंद है? से नहीं छुड़ाता, लेकिन संकट को सहने की ताकत अवश्य देता है। इसलिए धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। तो भावना की बात करी थी हमने कि भावना का जीवन में बड़ा मूल्य है। अगर इस जीवन में आप, ठीक है, तपस्या सब लोग नहीं कर सकते, त्याग सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन भावना को निर्मल अवश्य बनाया जा सकता है। अपनी भक्ति भावना को निर्मल बनाओ, करुणा को निर्मल बनाओ, वात्सल्य को निर्मल बनाओ। ऐसा झूठा स्नेह नहीं चलेगा। झूठा स्नेह समय पर काम नहीं देता। छल कितने दिन चलता है? एक न एक दिन तो प्रकट हो ही जाता है। इसलिए अपने अंदर निर्मलता रख करके इन भावनाओं को विशुद्ध बनाने पर मरण सुधर सकता है। तपस्या करने पर भी संलेखना निर्दोष हो जाए ये नियम नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में सरलता रही है उसकी संलेखना बिगड़ नहीं सकती, ये नियम है। जिसने जीवन में छल नहीं किया उसको मृत्यु कैसे छल सकती है? जिसका जीवन निश्चल है उसको मृत्यु नहीं छल सकती। ये बात हमने बड़े बुजुर्ग के मुख से सुनी थी। भैया लाल जी थे कोई बरेली में, उन्होंने कहा था कि महाराज जी, मैं बड़े अनुभव की बात करता हूँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक चीज खास देखी है कि जो सरल लोग होते हैं उनको मरते समय कभी तकलीफ नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह दी थी। जिनका हृदय सरल है, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, उनको मरते समय कभी तकलीफ नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। तो ये भावना की निर्मलता अपेक्षित है। इसलिए जब अपन ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं, स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि कह रहे हैं, त्रिभुवन इंद्र परिपूज्यम, तीन भुवन के इंद्रों से परिपूज्य, पूजने योग्य। अब वो पूरे 100 इंद्र कौन से होंगे? तो अपन ने अभी कितने गिन लिया? 40 और 32। अब कप्पा मर 24 है, 12 इंद्र की गिनती अभी बतला दी ना, शुरू के 4 स्वर्गों के 4, अंत के 4 के 4 और बीच के 8 स्वर्गों के 4, दो दो स्वर्गों के एक इंद्र होते हैं, तो ऐसे 12 इंद्र, और 12 इंद्र से संबंधित एक एक प्रतिंद्र और गिन लो तो फिर 24 गिनती हो जाती है। अब कुल कितनी हुई? 40, 32 और 24, 96 संख्या हो गई, बचे 4। तो कह दिया कि चंदो सूरो, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है, इनको भी गिन लो। फिर नरो तिर्यो, मनुष्य गति में जो इंद्र है, चक्रवर्ती को इंद्र माना जाता है मनुष्यों का, उसकी गिनती कर लो। और तिर्यो, शेर को जानवरों का राजा माना जाता है, मृगराज, उसको और गिन लो। इस तरह 100 इंद्र द्वारा पूज्य देवम, जो देव है। अब देव शब्द के 6 अर्थ किए हैं शुभचंद्र आचार्य महाराज ने, टीकाकार ने। आचार्य शुभचंद्र स्वामी भी बड़े विद्वान हुए हैं, जिनेन्द्र वर्णी जी ने तो उनको गुरु माना है। इन शुभचंद्र आचार्य को स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका का शुभचंद्र स्वामी को गुरु माना है। एक और शुभचंद्र आचार्य हैं, ज्ञानार्णव के रचयिता, और इन्होंने श्रेणिक चरित्र भी लिखा है, पांडव पुराण भी लिखा है, और एक समयसार कलश पर बड़ी अद्भुत टीका लिखी है, परम अध्यात्म तरंगिणी नाम है उसका। उसमें समयसार शब्द के कई अर्थ निकाले उन्होंने, 10 या 15 अर्थ निकाले उन्होंने। 5 परमेष्ठी भी अर्थ निकलता है समयसार का, समयसार का अर्थ आत्मा भी निकलता है, समयसार का अर्थ और भी रत्नत्रय भी निकलता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ऐसे करके कई अर्थ निकाले उन्होंने, बड़े विद्वान हुए। तो यहां पर देव शब्द के इन्होंने छह अर्थ बतलाए, और छह अर्थों में तिहुवन तिलयम देवम, तीन जगत के तिलक स्वरूप जो देव है वो कौन है? अरहंत देव, देवाधि देव, अरहंत देव। तो उनको वंदितता, उनका वंदन करके, वंदन की विधि क्या है? ऐसे तीन आवर्त पूर्वक नमस्कार करते हुए, जो पूरी विधि उसकी कृतिकर्म पूर्वक जो नमस्कार किया जाता है उसको वंदना कहते हैं। तीन परिक्रमा भी लगाई जाती है, अगर साक्षात विराजमान हो, जिन बिंब प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान हो तो तीन परिक्रमा भी लगाई जाती है। अब परिक्रमा का स्थान न हो तो बात अलग है, वरना परिक्रमा भी लगाती। अब नीचे की वेदी जो है उसमें अंदर जाकर के परिक्रमा लगानी पड़ती है। एक दिन हम पीछे से जा रहे थे, फिर लोगों ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे? हमने बोला प्रदक्षिणा लगाने के लिए, बोले कि नहीं ये प्रदक्षिणा। तो फिर अंदर आकर के फिर छोटी प्रदक्षिणा, अंदर से छोटी प्रदक्षिणा, यहाँ पर पूरी ऐसे गर्भालय की पूरी प्रदक्षिणा है। तो परिक्रमा लगा कर जो नमस्कार करते हैं बैठ करके, पांच अंगों को झुका करके और तीन आवर्त करके इसको मस्तक से लगाकर, वो वंदन है। तो त्रिभुवन में तिलक स्वरूप तीन जगत के इंद्रों द्वारा परिपूज्य जो देव हैं, अरहंत देव, देवाधि देव, उनका वंदन करके भव्य जन आनंद जननियो अनुपेहो वोच्छम, भव्य जनों को आनंद उत्पन्न कराने वाली, यानी भव्य जीवों के आनंद की जननी, जननी का अर्थ जन्म देने वाली माता, तो भव्य जीवों को आनंद प्रदान करने वाली, भव्य जीवों में आनंद को उत्पन्न करने वाली, वैराग्य उपावन माई, माई का अर्थ क्या है? माता। आपने विचार किया कभी छेड़ाला में ये पंक्ति क्या अर्थ है इसका? पढ़िए जरा पांचवी ढाल का पहला छंद, मुनि सकल व्रती बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो ये जो माई शब्द है वो यहां से आया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से। वैराग्य को उत्पन्न करने में माँ जैसी है, ये बारह अनुप्रेक्षाएं हैं। तो भव्य जीवों में आनंद को जन्म देने वाली माता स्वरूप अनुपेहाओ, अनुप्रेक्षाएं, उनको ग्रंथकर्ता कहते हैं वोच्छम, मैं कहूंगा। तो इस प्रकार ग्रंथकर्ता ने यहां पर देव को नमस्कार करके मंगलाचरण भी कर लिया और फिर अपना संकल्प भी प्रकट कर दिया कि यहां पर इस ग्रंथ में मैं क्या करूंगा, मैं उन अनुप्रेक्षाओं का कथन करूंगा जो भव्य जीवों के अंदर आनंद को जन्म देने वाली हैं, जन्मदात्री हैं, उन अनुप्रेक्षाओं का कथन करूंगा। वे अनुप्रेक्षाएं कितनी हैं? तो 12 हैं। तत्वार्थ ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है, आचार्य कुंदकुन स्वामी ने बारस अणुवेक्खा नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन है, और स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि ने भी इस ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब आप दोपहर में आगे का वर्णन सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। भव्य जीवों को आनंद देगी, अभव्यों का कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसके बाद आगे की गाथाएं, मंगलाचरण सवेरे अपन ने पढ़ा था और उसमें आचार्य कुमार कार्तिकेय स्वामी ये संकल्प भी किया, पहले तो इष्ट देव को नमस्कार किया, तीन भुवन यानी तीन जगत में तिलक स्वरूप शिरोमणि श्रेष्ठ, और तीनों लोक के इंद्रों द्वारा पूजनीय जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, उनका वंदन करके फिर अपनी बात कही कि मैं भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली जननी के समान अनुप्रेक्षाओं का वोच्छम कथन करूंगा। अब वो कौन सी है अनुप्रेक्षाएं बतलाते हैं? अद्धुव असरण भणिया, संसारा मेघ मन्न मसुइतम आसव संवरणामा निज्जर्लोयाणुपेहाओ इजानीऊन भावः दुल्लह धम्माणु भावनाणिचम मणवयण काय शुद्धि एदादस दोवभणि याहू। उसको दो को लंबा खींच सकते हैं, एदादस दोवभणि याहू। तो अध्रुव, अध्रुव यानी न ध्रुवम, अध्रुवम जो ध्रुव स्थाई नहीं है उसको अध्रुव कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में अनित्य कहो। असरण, शरण का अर्थ रक्षक होता है। प्राकृत भाषा में षटकोण का और शीतलनाथ भगवान का श श नहीं है, सिर्फ साधु का स है, तो असरण है। वैसे अपन चत्तारी मंगलम वाला जो पाठ पढ़ते हैं उसमें भी चत्तारि शरणम पवज्जामि, शरणम नहीं शरणम, वो स जो है समता का स, साधु का स है, असरण। शरण के दो अर्थ होते हैं, शरणम गृह रक्षित्रो, शरण का एक अर्थ होता है घर और दूसरा अर्थ होता है रक्षक। असरण माने कोई रक्षक नहीं है। भणिया ये कही गई है भावना। फिर संसारा, संसाराम ये स्त्रीलिंग कर दिया अनुप्रेक्षा, संसार ये अनुप्रेक्षा होती है। फिर एकम एकत्व, अकेला ही है जीव, ये सब संगी साथी सब या तो भ्रम रूप है या है किसी अपेक्षा से तो क्षणिक है। 84 लाख योनियों में कोई किसी के साथ नहीं रहता, अकेला ही भटकता है जीव। मण, मण यानी अन्य, जितने पर पदार्थ हैं वो सब अपने से अन्य अर्थात भिन्न रूप है। अस्वित्तम अशुचिता, अशुचिता माने शरीर जो है जिसके प्रति अपना सबसे अधिक राग होता है, वो राग करने की वस्तु नहीं है। क्योंकि साफ सुथरी वस्तु से राग करो तो कहीं बात जमती है, लेकिन ऐसी अपवित्र वस्तु से राग करना बुद्धिमानी नहीं है। आसव, आश्रव संवर नामा, ये दो नाम वाले हो गए। बाकी फिर निज्जर लोयानुपेहाओ, निर्जरा और लोकानुप्रेक्षा भी है। संसार और लोक, इसमें अंतर करना पड़ेगा। संसरणम संसार चतुर्गतिक परिभ्रमणम इत्यर्थ, चार गतियों में भटकने का नाम संसार है। और चार गतियां जिन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र जो है, वो जो लोकाकाश है वो लोक है। इसलिए संसार अनुप्रेक्षा का मतलब चार गतियों में भ्रमण का अच्छी तरह बारंबार चिंतन करना। 84 लाख योनियां हैं, 14 जीव समास है, 14 मार्गणाएं हैं, ये सब चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा। और फिर लोकानुप्रेक्षा में क्या है, 3 लोक का चिंतन करना, भली प्रकार से चिंतन करना, संस्थान विषय धर्म ध्यान करना, वो भी लोकानुप्रेक्षा बन जाती। तो लोक और संसार ने, तो फिर 11 अनुप्रेक्षा होती। अगर लोक और संसार को अपन एक मान ले, मैं सारे संसार में भटका हूं, ये एक औपचारिक कथन है। वास्तव में देखा जाए तो संसार भ्रमण का जो क्षेत्र है वो लोक है। क्षेत्र की अपेक्षा से अपन चिंतन करो और किस क्षेत्र में कहां पर क्या स्थितियां हैं गतियों की, तो फिर उनका चिंतन करने से लोकानुप्रेक्षा। लेकिन अपना जो भ्रमण है अंतरंग दृष्टि से देखा जाए तो संसार क्या वस्तु है, राग द्वेष और मोह का नाम ही संसार है, बस वही हो गया। उस क्षेत्र परिवर्तन में वो भी फिर स्व और पर क्षेत्र की अपेक्षा से दो प्रकार का है। तो पर क्षेत्र की जहां चर्चा करते हैं तब उसमें ये लोक का चित्रण आ सकता है। तो निर्जरा और लोकानुप्रेक्षा, आश्रव संवर निर्जरा फिर लोकानुप्रेक्षा, फिर ये जानीयुण भाव, इनको जान करके भावना करो। दुर्लभ धर्मानुभावना निचम, दुर्लभ भावना और धर्मानुभावना, इनको निचम भाव प्रतिदिन इनको भाना चाहिए। कभी अष्टमी चतुर्दशी या फिर कोई ऐसे दिन खास चुन करके अपन भा लेते हैं कभी कभी, या फिर कभी कोई ऐसा मौका पड़ता है कि भी किसी ने कह दिया कि भी 12 भावना पढ़ लेना, तो उस दिन बना लेते हैं मूड, लेकिन नहीं, इनको हमेशा भाते रहना चाहिए। सुकुमाल स्वामी आदि मुनियों का जो वर्णन है उन चरित्रों में, सकल कीर्ति आचार्य द्वारा रचित, तो इतना सुंदर चित्रण किया उन्होंने। और जितने भी वैराग्य के प्रसंग, क्षत्र चूड़ामणि में जब जीवंधर कुमार को वैराग्य होता है बंदर का वृत्तांत देखकर, बगीचे में बंदर लोग खेल रहे थे और उसमें एक घटना ऐसी घट गई, तो कोई बंदरिया एक बंदर से नाराज हो गई, तो उसको मनाने के लिए उसने एक बड़ा फणस का फल ला करके उसको दिया।